نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. آپ کے سامنے سورۃ زمر کی آیات رکھوں گی. اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آج دنیا میں جو عمل کا موقع ہے, جنہوں نے اس کو گنوا دیا تو قیامت کے دن پھر حسرت ہوگی, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی حسرتوں سے بچا دے. پیچھے سے اصل میں توبہ کی آیتیں پیچھے ہی سے چلتے ہیں اس مفہوم کو لیتے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے کہ میرے بندو, ذرا سا غور کیجئے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے, زیادتی کر چکے, اسراف کر چکے, یعنی کہہ لیجئے کہ حق سے زیادہ لے چکے, کیا نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے, پوری طاقت ہے کہ وہ ایک انسان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کریں. آپ کا میرا رب مجھے اور آپ کو پکارتا ہے. ہم کون ہیں؟ گناہوں کے پتلے. ہر انسان خطا کار ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. ہر آدم کا بچہ خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کر کے شرمسار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نہ تو انبیاء کرام کو پکار رہا ہے, نہ اولیاء کرام کو, نہ ولیوں کو, نہ بہت بڑے بڑے نیک عمل کرنے والوں کو. کن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنے اوپر ظلم کر چکے, زیادتی کر چکے, اسراف کر چکے. یا ذرا سا اس محبت کو تو محسوس کریں جو اپنے مالک کو, جو ہمارے رب کو اپنے بندوں سے ہے. ہم کسی کی زیادتی کے بعد اس کو اتنے پیار سے پکارتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو کہتے ہو گناہ گارو, او ظالموں, او جہنمیوں, او فاسقوں. آج ہماری زبانوں سے آگ نکلتی ہے, یقین کریں, شعلے اگلتے ہیں. گناہ کر کے شرمانے والا, شرمندہ ہو کر اپنا راستہ بدلنے والا شاید اللہ کے ہاں بڑا مقام پالے, لیکن کچھ لوگ اپنی نیکیوں کے زوم میں مبتلا دوسروں کو سر عام رسوا کرتے ہیں. ایک لڑکی جو مجھے کہیں بھی ملی تو کہنے لگی کہ مجھے دین سے خوف اس لیے آتا ہے کہ سر محفل کھلی جگہ پہ, یعنی ہوگی بازار میں جہاں مرضی ہوگی, ایک برقعے والی آنٹی نے آ کر میرے بازوؤں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, تم جہنم میں جاؤ گی. کہنے لگی میں نے اس کو بڑی رونت سے کہا آپ کو کیا لگے, میں آپ کو ٹوک رہی ہوں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے, جو آپ کا دل کیا آپ وہ پہن کے آ گئی, جو میں نے پہننا دل کیا میری مرضی ہے. کہنے لگی کہ تم جہنم میں جاؤ گی. اب یہ وہ لڑکی سنا رہی ہے جس کو اللہ الذین اسرفوا کہہ رہا ہے. کیا تھا اسراف اس نے, اس نے غلطی کی تھی, اس نے نافرمانی کی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ذرا سا ٹون کو تو دیکھیے. وہ کہتی مجھے دینداروں سے خوف آتا ہے, میں کہیں بھی برقعے والا یا کوئی دیندار شخص دیکھتی ہوں نا تو مجھے پلپیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی اس نے دیکھنا مجھے ٹوکنا ہے, روکنا ہے. چونکہ کپڑے تمہارے بازو ادھورے تو تم آگ میں جاؤ گی. اب دیکھیے اس نے چھوڑا تو نہیں لیکن دین چھوڑ دیا, خوف آ گیا. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہے اتنا حوصلہ ہمارا, اتنا ظرف ہے हमारी ज़ुबानों में से होता है ऐसे, फिर उस वक़्त जहर भी टपकता है, हमारे अंदाज भी सख्त होने लगते हैं। हम कहते हैं पक्के जहन्नमी, ये हैं ही बस बर्बादी। नहीं, ला तकना तुम्हें रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। किसी गुनाहों में डूबे हुए शख्स को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाना ऐसे ही है कि किसी डूबते हुए को बचाना, या किसी दम तोड़ते हुए शख्स को सांस देकर वापस उसका ज़िंदगी से राबता ताल्लुक कायम करना। याद रखिए, गुनाहों का एक अपना गिल्ट होता है, हम सब गुनाहगार हैं। बाज़ दफ़ा गुनाहगार शर्मिंदा होकर अल्लाह के हाँ आला मुकाम पा लेता है, लेकिन अपनी नेकियों के नशे या नेकियों के तकब्बुर में चूर शख्स अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है। तो इतनी बात का खुलासा क्या है कि लोगों को मायूस नहीं करो। आप उनको वो कहें कि जिसको उनका दिल कबूल कर ले। खैर, ये मौजू नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के आगे चलते हैं। ला तकना तुम रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीया, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमाता है, उसकी अथॉरिटी है। दुनिया के किसी भी कानून, किसी भी मुल्क, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, कोई भी है, क्या वहाँ का जो बड़ा लीडर है उसके पास इख्तियार नहीं होता? क्या वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करके कवानीन बदल नहीं सकता? और यहाँ तो हो सकता है कि बहुत सारों के हाथ बंधे हों, सदर को वज़ीर आज़म से पूछना पड़े, वज़ीर आज़म को काबीना से पूछना पड़े, उनको आगे सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़े। यहाँ लॉ के अंदर कितने अंदर पदर पर्दा हाथ होते हैं, अल्लाह कौन है? ला युसलुन हो, उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसके आगे किसी की कोई मजाल नहीं है। वो सारी जिंदगी के गुनाहगार को एक लम्हे में नेकियों का खूगर कर सकता है। आप अपने ऊपर लेकर सोचें, जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो कोई दिन होता है, कोई वक्त होता है, और जिसको उर्दू में कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। शायद आज का दिन हम में से बहुत सारों का हो। बहुत सारे लोग बाद में जहाँ मिलते हैं वो कहते हैं, हमने फलां दर्स के बाद नमाज शुरू कर दी थी, कोई कहता है मैं उसके बाद से शरई पर्दा शुरू कर चुकी, कोई कुछ। ये वक्त की बात है, सुनाने बोलने वालों को तो खबर भी नहीं होती कि किसके दिल पे क्या बीत रही है, ये रब जाने, रब के बंदे जाने। तो कभी भी बंदे और उसकी तौबा के रास्ते में रुकावट ना बने। हमारी तलख बातें, हमारे छुपते हुए जुमले बाज़ दफ़ा लोगों को ढीठ बना देते हैं। वो कहते हैं पहले तो कर रहे थे अपने लिए, नफ्स की बात थी, अब इसके सिरे चढ़ के ये गुनाह करेंगे। तबलीग के अंदर भी खूबसूरती होनी चाहिए, और इंसान को बात वो कहनी है जो पहुंच जाए, और अगर बात पहुंची नहीं बल्कि उल्टी पड़ गई तो ये तो वही हुआ कि डॉक्टर कहे गोली तो देनी ही देनी है, चाहे मरता है तो मरे, सही होता नहीं, मैंने गोली देनी है। तो याद रखिए, बात लोग तबलीग की गोलियाँ उल्टी सीधी दे देते हैं। तो आप खुद जानते हैं, एक नर्स गलत दवा दे दे तो मरीज का क्या हाल होगा। जिस्मानी मरीज जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी इलाज और एहतियात से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंसान की रूह नहीं शामिल होती, जिस्म होता है। लेकिन जो गुनाहों का ढीठपन होता है ना, इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इन्ना हुवल गफूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है, मैं आज तौबा के मौजू पे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये इस पे बहुत बात की हुई है, और आज का हमारा मौजू तौबा नहीं है, कुछ और है। अब सवाल पैदा होता है कि जिन्होंने इसराफ किया वो मायूस ना हो, ठीक है, करें क्या? इसका जवाब अगली आयत में, व अनीबू इला रब्बिकुम, आ जाओ अपने रब की तरफ। जरा इमेजिन करें ना, माँ बाजू खोल के कहती है मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। जब भी आप किसी का रास्ता देख रहे होते हैं ना, तो आपकी नजरें दरवाजे पे लगी होती हैं, और आप एक एक लम्हा उसके इंतजार में गुजारते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, वो अनीबू इला रब्बिकुम, आओ इनाबत, मुनीब का लफ्ज़ बहुत सारों का होगा नाम, मुनीबा नाम बहुत आम है आज के दौर में, रजू तो करो, लौट के तो आए। ज़रा से यहाँ स्टेप्स नोट कीजिएगा, मेरे साथ रहे। पहला मरहला क्या था? मायूस ना हो, ला तकना तो। अगर आप बस अपनी उंगलियों पे गिन लें, क्योंकि आपके सामने आयत नहीं है, तो हो सकता है आपको अपने इमेजिनेशन से समझना पड़े। पहली चीज़ क्या कही थी? ला, नहीं, डोंट। तकनतु, ला तकनतु, मायूस नहीं होना। इसको एक साइड पे लिख के रख दे, क्या नहीं होना, मायूस नहीं होना। करना क्या है अब ये गिनिएगा, व अनीबु, और रुजू करो, इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ, पहली चीज। नंबर दो, व अस्लिमु लहु, दूसरा स्टेप है ये, और उसकी तरफ झुक जाओ, मती हो जाओ, सबमिट कर दो। मिन कब्ल यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि आ जाए तुम्हारे पास वो अजाब। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद ना दिए जाओ। दो चीजें हो गई, पहला क्या है अनीब, दूसरा क्या है असलमो, ठीक है, टाइम बाउंड कर दिया। तीसरी चीज, वत्तबियु अहसनमा उन्जिल इलैकुम मिन रब्बिकुम, और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की। मिन कब्ल यातियकुमुल अजाब बगतन, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए। वान तुम ला तशउरून, और तुम्हें इसका शऊर ही ना हो, यानी मारे ना जाओ भूखे भूखे, यानी तुम ये काम कर लो, ऐसा ना हो कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए। अजाब क्या होता है, मौत, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रॉम, हादसा, शौक में चले गए, हम जिनको ये लफ्ज कहते हैं ना, आप सोचिए उसमें तो तौबा की भी मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं पहले मेरी तरफ रजू करो। अगली आयत पे जाने से पहले मैं आपको ये तीन स्टेप्स थोड़े से दोहरा दूं। सबसे पहले क्या होती है, इनाबत इलल्लाह, अंदर से रुख मुड़ने लगता है। आप में से जो सिस्टर्स ड्राइव करती हैं, मेरा ख्याल है कि वो मेरी इस मिसाल को समझ सकेंगी। आप देखिए कि गाड़ी आपकी सीधी चल रही है और आप एकदम उसको बैक में लेके जा सकती हैं, नहीं होते ना, पहले गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं, फिर आप इंडिकेटर देते हैं, फिर आप पीछे देखते देखते हल्के हाथ से गाड़ी को मोड़ते हैं, और फिर जब आपको तो यकीन हो जाता है पीछे कोई नहीं, तो आप पूरी गाड़ी तो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसी तरह जो इंसान का नफ्स है ना, उसकी लगामें हाथ से निकली होती हैं। आप और मैं जिन लोगों को कहते हैं ना फासिक, नाफरमान, फलां, क्या पहना हुआ था, देखो क्या हुलिया था, क्या देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, ये आप और मैं कह रहे होते हैं, उससे कोई पूछे तो उससे बड़ा तो कोई खुशकिस्मत ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में शिकार है, वो तो मजे में है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वह अनीबू, टेक अ टर्न, इंडिकेटर तो दो, पहले अपना रुख अपने रब की तरफ तो करो, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप मैं किसी इंसान को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसको अल्लाह का तारुफ करवाएं, है कौन, कुदरत कितनी है, कर क्या सकता है, उसने तुम्हें दिया क्या कुछ है, क्या तुम उसके बगैर जी सकते हो, यानी उसको रब की जरूरत महसूस होने लगे जिंदगी में। किसी भी इंसान को छोड़ के अगर आप अपने ऊपर ही ले लें, क्या आप कोई अपनी ऐसी आदत छोड़ना चाहते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, है कोई आप में से ऐसी आदत वाला? आप कहेंगे सैकड़ों आते हैं, दिल भी चाहता है नेक हो जाए, मन चाहता है कि हम ऐसे प्यारे हो जाएं कि जब अल्लाह ताला हमें देखे तो उसको प्यार आ जाए, लेकिन बार बार हमारे इरादे टूटते हैं। आपने कभी वो सिस्टर्स को देखा जो वेट लूज करना चाहती हैं डाइटिंग के नाम पे, दिल चाहता है स्लिम स्मार्ट हो जाए, बस आज के बाद ऑयल नहीं खाना, आज के बाद चीनी नहीं लेनी, फिर क्या होता है एक दो दिन के बाद? जैसे मेरे पास एक कुछ सिस्टर्स की गवाही है, कितने दिन की डाइटिंग थी, गरम गरम समोसा देख के तोड़ दी, बेबस हो जाता है ना बंदा। कभी आप कई दिन 10-12 दिन तक आप बड़ा अच्छा लाइट खाना खाते हैं, आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, बट एकदम आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, होता कि नहीं होता, सबके साथ होता है ना। बस जिस तरह समोसा देख के वजन कम करने वाला कंट्रोल नहीं कर सका ना, इसी तरह याद रखिए कि इंसान के नफ्स के अंदर भी कुछ चीजों की इश्तिहा होती है, फिसल जाता है कदम, जाना नहीं जाता, लेकिन वो समोसा खाने तक तो ठीक था, खाने के बाद क्या शुरू हो जाता है, गिल्ट, अफसोस, या हसरत, हाय मैंने क्या किया, ना ही खाती, देखो टेस्ट तो खत्म हो गया, कोई कितनी को देर मुझे इसका टेस्ट रहना था, लेकिन वो टेस्ट खत्म हो गया लेकिन उसका असर मौजूद है। इसी तरह गुनाहों की एकदम इश्तिहा होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि क्रेविंग होना। आप में से किसी को चाय की आदत है? अभी ना जरूरत पड़ जाए चाय की, जिसको आदत होती ना, तो जब चाय नहीं मिलती तो उस वक्त क्या फील हो रहा होता है? कुछ अंदर से गिरापन, कच्चापन, टूटापन, बस यही क्रेविंग गुनाहों की भी होती है। किसी को गाने की होती है, किसी को मतलब घूमने फिरने की होती है, कुछ को शॉपिंग की होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं, एक सिस्टर की बात याद आ गई, असल में कहने लगी कि मुझे क्रेविंग थी शॉपिंग की, दीवानों की तरह शॉपिंग करती थी, ऐसी खुजली हाथों में जाना, मॉल्स में क्या लगा हुआ है सेल में, ये पकड़ूं वो पकड़ूं, फिर उसके बाद क्या करना, अगले दिन मियाँ को कहना अब इसमें से आधी चीजें वापस करनी है, वापस करने के बहाने जाना तो दो चार और खरीद लें। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा उनको करीब रहकर, उनका रोज का एक चक्कर बाजार का जरूर है, बाजार ना कह ले मॉल कह ले, आज जा रहा है तो आज आ रहा है। मियाँ को भी चूंकि तसल्ली थी, जो आज आ रहा है ये कल वापस आ जाना है, तो वो भी खुशी खुशी ले जाते थे कि बहल जाती है। अल्लाह का हुक्म देखिए कि तकलीफ आ गई, जिस्म में कुछ अल्लाह ने कुछ मसला डाल दिया, बेड रिडन हो गई, वॉक नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती। उन्होंने मुझे खुद कहानी सुनाई, मैंने तो नहीं देखी, कहती है जब मैं बेड रिडन थी, मुझे और कोई काम नहीं था घर पे, मुझे बेड से उठना नहीं, तो मैंने फिर अपना टैब पकड़ ली, कहती फिर मैं इंटरनेट से शॉपिंग करनी शुरू हो गई। बहुत सारी चीज़ें ईबे और अमेजोन है, और बाहर के मुल्कों में तो आम स्टोर्स वाले भी यही कहते हैं, आप चीज़ें ऑर्डर करें तो कल आके ले जाएं, स्टोर्स की चीज़ें ऑर्डर करनी शुरू कर दी। एक ये वक्त भी आता है कि घर में रखने को जगह नहीं होती चीज़ें। मैं जो चीज़ आज थोड़ी सी माजरत के साथ, हम सभी सिस्टर्स ही हैं, कोई अपने ही है ना, कोई गैर तो नहीं है ना हम में से, मैंने ये देखा कि आज क्रेविंग बहुत है। कल के दिन का एक एक्सपीरियंस, छोटा सा, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। कराची में थी मैं कल, तारिक रोड बहुत ज़्यादा वहाँ की कंजस्टेड और मशहूर प्लेस है जिसको लोग शॉपिंग के नाम पे यूज़ करते हैं। मैं 10 दिन रही हूँ कराची में, मैं वहाँ नहीं जा सकी, गई भी नहीं, इरादा भी था, काम भी थे, नहीं जा सकी। कल आखिरी दिन था वहाँ, कोई दूसरा काम था, शॉपिंग नहीं थी उसके लिए जाना पड़ा। तो जब गए वहाँ पहुँचने वाले थे तो ड्राइवर ने बताया कि ये तो सारी खुदी हुई है, तो वो घूम के गलियों से निकल के जिसको जिस दुकान तक पहुंचना है वो फ्लांगते फ्लांगते पहुंचे थे। बीच में जो मेन रोड था ना, वो एक साइड का पूरा खुदा हुआ था, यानी आप समझे कि दुकानों के आगे खुदी हुई जगह, पीछे से दुकानों में आ जाओ जैसे भी आ जाओ, ये हालात है वहाँ के। तो वो ड्राइवरों को पता होता है कौन सी गली किधर जाती है, वो पीछे गली के खड़ा करके कहता है जी इधर से चले जाइए होगा। इसके बावजूद जो बात आपसे अब शेयर करने लगी हूँ, औरतों से बाजार भरा हुआ था, और आपने देखा ना कि फुटपाथों पे भी रख के कपड़े लोग बेच रहे होते हैं, दुकानें भी हैं, गिरती पड़ती फुलांगती वही वो मट्टी के ढेरों में से भी फुदक फुदक के, और वो साड़ी वो सड़क को पैदल क्रॉस कर रही थी, बाजार भरा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड साथ थे तो कहने लगे पीपल लव शॉपिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की में लोग शॉपिंग को बहुत पसंद करते हैं ना। करदूस है बाबा, बड़ा अच्छा ड्राइवर है। तो वो कहने लगा साहब ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जून जुलाई की गर्मी में घर नहीं बैठता, आजकल तो मौसम अच्छा है, ये तो जून जुलाई में औरत घर नहीं बैठता। और मैं ना गाड़ी में चूंकि बैठी हुई थी, अब वो ऐसे ही लग रहा होता है ना कि सीन चल रहे हैं डिफरेंट, तो मैं ये सोच रही थी कि इनमें से कोई भी एक ऐसी नहीं होगी कि इसके घर में एक भी जोड़ा ना हो, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, राइट? और ये कपड़े तो बहुत सारे होंगे घर में, तो ये किस मजबूरी ने आज इनको निकाला? एक चीज मेरे जहन में ये आई। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आई कि अगर इसी रोड पे एक अल कुरान का इंस्टीट्यूट होता, कोई भी कुरान पढ़ाने वाला, तो इसी तरह फ्लांग फ्लांग के लोग आते, हालांकि उन्होंने नोटिस लगाए हुए हैं कि ये 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हुई है, फिर खुल जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं सब्र हो रहा। और अगर इन दिनों में किसी एक दुकान में सेल है तो फिर ज़रा लोगों को हाल देखिए। ये भी सीन मैंने देखा अपनी आंखों से, किसी के साथ मैं गई तो वहाँ किसी जगह से हम गुजरे तो वहाँ जुनेद जमशेद नाम की दुकान थी, ऐसे लग रहा था कि शायद अंदर मुफ्त चीज़ें बिक रही हैं। कहने लगी इतवार तक सेल लगी हुई है, शायद इधर भी लगी होगी, आपकी भी कोई खबर होगी इधर, इतना रश। कहने लगी कुछ रिटर्न करना है, रुकते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़े होते हैं लेते हैं चले। यकीन करें कंधों पे ऐसे हैंगर डाल डाल के हाथों में नहीं पकड़े जा रहे थे, क्योंकि पूरी दुकान पे ऊपर सेल 30-40-20% थे। जिसको किसी एक माँ का जुमला अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी अंधों की तरह शॉपिंग करती है, मैंने कहा वो क्या होती है, कहती यूं डालती है यूं डालती है, कहती इसको दीवानी हो जाती है ये मॉल में जाके ना, जैसे अंधे को नहीं पता ना क्या ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, जरूरत है नहीं, ये इस तरह अंधों की तरह शॉपिंग करती है। इतनी सिस्टर्स जो शॉपिंग कर कर आ रही थी वो तो एक अलग केस था, लेकिन मेरा दिल दिमाग किस में खोया हुआ था उस नाम पे, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है किस शख्स का इंतकाल हुआ, मेरे लफ्ज में वो जे जे था, वो किधर है, जिसका दुकान जिसकी होगी मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन नाम जिसका है आज वो मनो मट्टी के नीचे है, इतनी दौलत इतनी शोहरत इतना वक्त, लेकिन चला गया ना। बस तो हम सीखते नहीं है, हमारी जिंदगी में इनाबत इलत दुनिया बहुत होती है, तो अल्लाह का तवानी वो इला रब्बी को, आप पूरे दिल से पूरे यकीन से ये दुआ मांगे, आज का दिन लिख लें, यकुम फ़रवरी है 2017, आप पूरे यकीन से आज से दुआ मांगे, अगर आपके दिल में कोई शौक है ना, दुनिया की क्रेविंग है, शॉपिंग का शौक है, ढूंढ ढूंढ के चीजें लेने का शौक है, यहां बैठ के अल्लाह से कि अल्लाह मेरा ये शौक कम कर दे, कम हो जाए, यकीन करें आप अपने अंदर एक गैर महसूस किस्म का फर्क महसूस करेंगी, दिल से मोहब्बत निकल जाती है। दुआएं मौजूद है, मसनून दुआओं में अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाह मेरे दिल से हर चीज से ज्यादा अपनी मोहब्बत कर दे, कि अल्लाह मेरे दिल से शॉपिंग की मोहब्बत निकाल दे। और मैं उनको देख रही थी ना सिस्टर्स को कल दुखी, तो मैं सोच रही एक वक्त था कि हम भी इसी तरह शॉपिंग करते थे, मुझे लगे ये सजा काट रही हैं अगर ये गर्मी में बाहर धूप में पसीने मट्टी में जा रही हैं। अब आप देखिए कि अनीबु इला रब्बिकुम फर्स्ट स्टेप होता है, मेरा हाल है समझ गए आप लोग, आप सब अपना चोर ढूंढ रहे हैं, हर एक के अंदर होता है, मेरे अंदर तो बहुत सारे होने हैं, हम बहुत सारी चीजों में डिट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी जिंदगी में, उसको ढूंढे। उसके बाद वसलिमु इला रब्बिकुम, सेकंड स्टेप क्या होता है, अब झुको, जब वो चीज निकल जाती है ना जिधर हमारी तवज्जो बड़ी होती है, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तो मुड़ना है ना, तो असलिमु इला रब्बिकुम। मसलन आज के दौर का अनीबु इला क्या है, कोई गैस कर सकता है? सेलफोन, मीडिया, नेट, फेसबुक, फैशन डिजाइनर्स और कैटलॉग्स, और क्या चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग, ये सारी चीजें हमारे माइंड की मेमोरी को फिलअप कर देती हैं, बिलीव मी। जैसे आपके पास अगर 16 GB का फोन है ना, तो 16 GB में जीबी जिनको पता है उनको पता ही है, जिसको नहीं पता वो बाजी कह ले, एक ही बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब टेलीफोन में आप 14 GB में उल्टम पलटम डाल चुके हैं, तो पीछे कितनी जगह रह जाएगी, एक अगर आपने एक कुरान भी डाल दिया है तो 2 GB रह जाएगा, आपने जो चीज डालनी है वो 10 GB की है, क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा। माइंड नहीं करेंगे आप सब, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, और इसमें आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि आपको अल्लाह ने इतने बड़े बड़े घर दिए, खुली जगह दी, नौकर हैं, संभालते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, लेकिन एक चीज मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को चीजों का ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन समझते हैं, और लेनी है और लेनी है, आज जाके किचन में टोटल प्लेटें गिनिएगा, सारी अंदर बाहर के शोकेसों में 200-250 प्लेट एक एक घर से निकलेगी, कोई शीशे की, कोई पत्थर की, कोई मेलामिन की, कोई स्टील की, कोई पुरानी, कोई नई, आप ग्लास गिन के देख लीजिए आपके घर में 50 से ज्यादा ग्लास होंगे, चले ये तो छोड़ दें, ये तो जरूरत की बात है, इट्स ओके, जोड़े गिन के आए, मैं ये नहीं कहती आप कितने बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही, आप महीने के 30 जोड़े भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं, बट आपकी अलमारी में 100 जोड़ा नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। ऑब्सेशन क्या होता है कि भूख है, पिछला देना कोई नहीं और अगले से हाथ नहीं रुकता, अलमारियां नहीं बंद होंगी, वक्त पे मिलती कोई नहीं है चीज, क्योंकि ज्यादा बहुत है, एक उसको नहीं मिलती जिसके पास कोई भी नहीं होती, एक ही जूता था वो भी नहीं मिल रहा, और दूसरा उसको भी नहीं मिलता जिसके पास 20 जोड़े थे, अब एक पाँव मिल गया दूसरा नहीं मिल रहा, पता नहीं किस जोड़े के अंदर फंस गया, आप करके देखें, वजह क्या है कि घर में गुंजाइश है ना, एक और अलमारी ले आएंगे जी, इस कमरे में एक पड़ी हुई थी 2 अलमारियां और रख दें, क्योंकि घर बड़े हैं और माशाल्लाह संभालने वाले बहुत हैं, इसकी वजह से आप फील करें, यानी मैं सिर्फ एक अपने सोच को हमवार करने के लिए आपको बताती हूँ कि दिल दिमाग को एक पे रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इलाह होता है ना असली मौला रब्बिकुम, तो दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं जाती, आप एक एक चीज को नोट करें ना, मेरे पास एक चीज है इस टाइप की, अब मैंने दूसरी नहीं रखनी। मसलन कपड़ों ही की बात कर रहे हैं तो इस पे कर लें, एक अच्छा जोड़ा शादी में पहनने वाला, एक मीडियम जोड़ा पार्टी में पहनने वाला, घर पहनने वाले कपड़े 5-6 हो सकते हैं क्योंकि आपने रोज धोने, रोज पहनने हैं, एक दिन कट्ठे नहीं भी धुलते। लेकिन एक ब्रांड, एक किस्म, एक ही नौयत के आपके पास अगर एक से ज्यादा कपड़े आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं ना, तो आपको ऑब्सेशन है, समझ ही नहीं आनी आपको पहनना क्या आपने, और आप इंजॉय थोड़ी करेंगे। फिर होता पता क्या है, वो बुत की तरह लटके होते हैं। मैं किसी की अलमारी उनके साथ शेयर कर रही थी तो कहती हैं एक एक दफा पहन के लटकाए हुए हैं, देने को दिल नहीं करता। वजह क्या भला देने को दिल नहीं करता? मैंने कहा ये 3 साल पहले आपने तब फुलां शादी पे बनाया था जी, ये उससे पहले की शादी पे है। 3-4 खानदान की जो शादियां थी उन्होंने गिनाई, मुझे भी कुछ अंदाजा हो रहा था देखकर। तो मैंने कहा क्या आप फिर नए बनाएंगी ना? कहती हाँ, क्योंकि ये तो लोगों ने देख लिए, दूसरा प्रोफेशन बदल गया, तीसरी बात ये है कि अब दिल कर रहा है अपने घर में शादी आए तो नए कपड़े बनाओ, जो भी होता है। तो मैंने कहा फिर ये किसी को दे दे, समझ रहे हैं कितना मुश्किल सवाल कर दिया। कहती दिल नहीं करता, क्यों? क्योंकि एक दफा पहना है, कोई दो दफा पहना है। तो मैंने कहा इसको हैंग किया है, आपको तो इंग्लिश में हैंग करना किसको कहते हैं, टांगना, हैंग करना कहते हैं किसी को, सूली पे चढ़ाना। आज जाके अपने जोड़े को हैंगर में रखे, वो यूं हैंग होगा जैसे वो हजरत ईसा का हैंग नहीं बनाया होता। तो हमने इनको हैंग ही किया हुआ है ना, असल में सूली पे चढ़ाया हुआ है ना, कभी तो अपने जिस्म के साथ उसको टच करे ना। तो मैं ये सोचती हूँ बड़े बड़े रंग खराब हो रहे हैं, और जब इतने जो होंगे तो हाथों में लगेंगे, कुछ ले जाएंगे मुछ ले जाएंगे, वो नहीं होगा। मैंने उन्हें कहा कि देखें अगर आपने ये सूट, कोई मसला नहीं आपने कितने का बनाया था, हम इस पे नहीं बात कर रहे, लेकिन अगर आपने इस सूट को 10 दफा पहन लिया होता ना आज तक, उस शादी से जिस पे आपने बनाया था तब तक, तो आज आप खुशी खुशी इसको किसी को दे देती। वजह क्या, शौक भी पूरा हो गया, अरमान भी पूरे हो गए, और पैसे भी पूरे हो गए, तो आप इसको देती तो आपको अफसोस नहीं होना था। अच्छा फिर क्या करते हैं लोग? मैंने कहा ये बाय द वे आपने ये किस उम्मीद में रखे हुए हैं, जरा मजे की बात सुनिएगा, हमारी खवातीन बड़ी सुगढ़ होती हैं। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि वक्त के साथ साथ के इनका रंग बदल जाएगा, ये एकदम खुल जा समसम कुछ और हो जाएगा? कहती नहीं बेटी बड़ी हो रही है ना, उसको ठीक करा के दूंगी। आपका अपना दिल नहीं कर रहा उसको दोबारा पहनने को। देखिए मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं अपने दिल से बात कर रही हूँ। वही जुनेद जमशेद में जब गए ना, तो एक कायल पे ऊपर लिखा हुआ था, एजेस लिखी होती है ना ये गर्ल्स के और फलां, आपको तो मेरे से ज्यादा पता होगा, मैं पहली दफा गई थी तो मैं खुश हो रही थी ये भी। तो एक तरफ इन्फेंट्स लिखे हुए थे, यकीन करें ये इतना कुर्ता, न्यू बॉर्न बेबी के नाप का वहां कुर्ते लटक रहे थे। कीमत मैंने जाके शौक से पढ़ी तो 1500 रुपए का कुर्ता था। तो मेरे साथ जो था मैंने कहा कि ये देखें ये बच्चे को पहनाने में उसकी बाजू तो नहीं मुड़ जाएगी, और उस बच्चे को पता है कि वो इतना खूबसूरत ब्रांडेड कुर्ता पहन रहा, और वो वाकई 2-3 महीने के बच्चे का कुर्ता था, और वो इस ब्रांड का लेके तो मां ही शौक से पूरा पहनना है ना, बच्चे को तो नहीं पता चलता। आपके बच्चे अब अगर वो मिकी माइंस और पता नहीं फुलां फुलां डिजाइनर्स के आदि हो गए हैं कि वो नहीं नीचे पहनते दूसरे नंबर के, कल माँ का छोटा किया हुआ जोड़ा बच्ची ने पहनना है। और जब आज के दौर में तो किसी कपड़े को हाथ लगाते हुए डर लगता है कि ये दर्जी ने कपड़े से ज्यादा पैसे ले जाने इसकी ऑल्ट्रेशन के, सच के नहीं? अपनी जिंदगी को आसान करें, हमारा वक्त कहाँ जा रहा है। आज की डेट फिर ले लें, यकम है, इत्तफाक से आसान है याद करनी। एक हफ्ता खुद को ऑब्जर्व करें सुबह से शाम तक, मेरा वक्त सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, किधर चला जाता है? किसी का इंटरनेट पे एक्स्ट्रा यूज में जा रहा है, किसी का कपड़ों को उलट पुलट में जा रहा है, किसी का किचन में और किसी का सफाइयां करने में, किसी का सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनने में, ये सब कुछ अल्लाह ताला कह रहा छोड़ो, वसलिमु लहू, अल्लाह के लिए मुसलमान हो जाओ, क्योंकि वो अजाब आ सकता है जिसके बाद मदद नहीं होगी। अब करें क्या? असल में अब हमारा वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है बात का, कि ये सब कुछ जिंदगी से जब निकल जाएगा, या इसको कैसे निकालें, उस खला को कैसे पुर करें, तो वह तभी अहसनमा उन्जिला इलैकुम मेरे रब्बी को, ये है वो फिलअप करने वाली चीज। यकीन करें किसी को एक लफ्ज ना आप कहें, ये पहनो वो ना पहनो, इतना ना खर्च करो वो ना टाइम जाया करो, आप उसकी ज़िंदगी में अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम ले आए कुरान, अपनी ज़िंदगी में इत्तबा ले आओ इस खूबसूरत चीज़ की जो रब ने नाजिल की है, तो देखना वो सब कुछ चला जाएगा। लोगों को मकसद दें, बेकार लोग बेकार वक्त इस्तेमाल कर जाते हैं।